करदम का गिफ्ट लेकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। करदम उसके चेहरे की खुशी देखकर अंदाजा लगा चुका था कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। सवेरा ने उसके लिए उसकी बहुत मदद की थी, इसके लिए वो उसे बाद में थैंक यू बोलने का इरादा भी रखता था। धड़कन ने उससे नहीं पूछा कि उसे कैसे पता चला कि धड़कन को बिल्ली पसंद आएगी। वो तो बस उसे पाकर करदम को भी तकरीबन भुला ही चुकी थी, जबकि वो उसके चेहरे की मासूमियत और बिल्ली के साथ उसे खेलता पाकर काफी पुरसकून अंदाज में उसे देख रहा था। जब उसने गैर इरादी तौर नजर अपने हाथ में बंधी घड़ी की तरफ देखा, जिसमें 12 होने में सिर्फ एक मिनट बाकी था। धड़कन, जल्दी से उठो यहाँ से और फौरन अपने कमरे में जाओ, और उस सरप्राइज का जिक्र किसी से मत करना। दादा साईं और अहमद चाचू साईं तुम्हारे कमरे की तरफ तुम्हें बर्थडे विश करने आ रहे होंगे, जल्दी से जाओ। और देखो, तुम किसी को मत बताना कि मैंने आधी रात को तुम्हें यहाँ पर कोई सरप्राइज दिया है। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? वो उसे भगाने वाले अंदाज में बोला, जबकि उसकी तेज अफरा तफरी की वजह से धड़कन को जितनी भी उसकी बात समझ आई, वो बिल्ली उठाकर अंदर की तरफ भाग गई। जबकि करदम ने जुनेद को फोन करके यहाँ से ये सारी चीजें उतारने के लिए कहा था, वो धड़कन और अपना ये मोमेंट स्पेशल बनाना चाहता था और यही चाहता था कि इस बारे में किसी को भी पता चले, और ना ही वो ये किसी को कहना चाहता था कि वो अपने बीवी के बच्चों जैसी ख्वाहिशें पूरी करके सुकून महसूस करता है। धड़कन सबसे नजर छुपाकर भागकर कमरे में आई, लेकिन इसके बावजूद भी ताइशा की तेज नजरें उसे देख चुकी थी। घर में सबका इरादा उसे सरप्राइज करने का था, जबकि ताइशा का ऐसा कोई इरादा ना था, इसलिए वो सर झुकती अपने कमरे में जाकर सो गई। करदम की बात मानते हुए उसने फौरन उसे अपनी केटी को छुपाया और सोने की एक्टिंग करने लगी, और एक ही मिनट के बाद अचानक उसके कमरे में शोर हुआ। दादा साईं, बाबा साईं, सवेरा, यहाँ तक कि ताई अम्मी भी उसे बर्थडे विश करने आई थी। वो हमेशा से अपना बर्थडे अपने अपनों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। बाबा तो वहाँ हमेशा काम में बिजी होते और सवेरा को अपने फ्रेंड से फुर्सत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके बर्थडे वाले दिन वो दोनों उसे बर्थडे विश करते और सारा दिन उसके साथ गुजारते, और सवेरा अपने हाथों से उसके लिए केक बनाती। वो बहुत खुश थी। सवेरा ने खुद उसके लिए अपने हाथों से हमेशा की तरह केक बनाया, जिसे काटते हुए उसने एक नज़र करदम को तलाश किया, लेकिन उसे वो यहाँ नजर नहीं आया था। जब सवेरा ने उसके कान में हल्की सी सरगोशी की, करदम लाला तुम्हें गिफ्ट दे चुके हैं और जिसको तुम भी देख चुकी हो, अब अपनी नजरों को जरा हम पर फोकस करो और हमारे गिफ्ट पर भी नजरसानी करो। सवेरा ने उसे अपनी तरफ मतवजा किया। आपको कैसे पता? धड़कन ने सरगोशाना अंदाज में पूछा। ये मेरा और करदम लाला का सीक्रेट है, तुम्हें क्यों बताऊं? सवेरा ने शरारत से कहा। मतलब कि आपने उन्हें बताया है कैटी के बारे में? धड़कन ने हैरानगी से पूछा तो वो मुस्कुरा दी, जबकि अगले ही लम्हे धड़कन उठकर आई लव यू कहते उससे चिपक चुकी थी। अरे, सरप्राइज हमने प्लान किया और मैडम इनके गले लग रही हैं, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं, दादा साई ने नाराजगी से कहा। ओहो दादो साई, आप तो मेरे फेवरेट हैं, वो उनका गाल चूमकर बोली तो दादा साई ने मुस्कुराते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया, जब उन्हें बाहर गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी। हुरिया दीदा मुकदम लाला आ गए। धड़कन नीचे की तरफ भाग गई थी, जबकि हुरिया का नाम सुनकर दादा साई के दिल में ठंडक सी उतरी थी। वो भी जल्द से जल्द अपनी नवासी को अपने सीने से लगाना चाहते थे। हुरिया का इरादा सबसे पहले धड़कन से मिलने उसके कमरे में जाने का था, लेकिन वो जैसे ही गाड़ी से निकली, धड़कन भागती हुई इसके पास आ गई। धड़कन के इस तरह से दौड़कर हुरिया के पास आने पर मुकदम बेसाख्ता मुस्कुराया था, जबकि अब दोनों एक दूसरे के गले लगी हुई थी और हुरिया उसे विश कर रही थी। ये लो गुड़िया तुम्हारा गिफ्ट, मुकदम ने उसका गिफ्ट उसके हवाले करते हुए कहा, जिसे धड़कन लेते हुए फौरन खोलने लगी। ओ, ये कितना प्यारा है, हाथ में पकड़ा ब्रेसलेट वो अपने हाथ में पहनते हुए बोली। तभी दादा साईं वहां पहुंच आए। दादा साईं को देखते ही मुकदम मुस्कुराते हुए उनकी तरफ आया और उनसे मिलने लगा, जबकि हुरिया वहीं पीछे खड़ी देख रही थी। दादा साईं ने एक नजर उसे देखा और फिर बाहें फैलाकर उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। उसने बेयकीनी से सामने खड़े शख्स को देखा, फिर मुकदम को सवालिया अंदाज में, जबकि मुकदम ने मुस्कुराते हुए से आगे आने का इशारा किया। हुरिया आहिस्ता आहिस्ता चलती उनके करीब आई, वो अभी बेयकीनी की कैफियत में थी। दादा साई ने उसे अपने सीने से लगाया, उसके माथे पर प्यार किया। उनका लम्स महसूस करते हुरिया की आंखों में पानी भर आया। कितने सालों से वो उनकी शफकत के लिए तड़प रही थी कि आज खुदा ने उस पर भी रहम कर दिया। तुम दोनों बहुत थक गए होगे, जाओ आराम करो, फिर हुरिया को अपने भाई की शादी की भी तैयारी करनी होगी। दादा साईं ने मुस्कुराते हुए धड़कन की रुखसती की सबसे पहली खबर हुरिया को दी थी। हुरिया ने एक नज़र धड़कन को देखा जो खुद हैरानगी और परेशानी से उन्हें देख रही थी। इतनी जल्दी दादा साईं, मेरा तो ख्याल था कि 12 दिन के बाद आपको करदम साईं को ये गिफ्ट देना चाहिए था, मुकद्दम ने मुस्कुराते हुए धीमे लहजे में कहा। उसने 15 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे हैं, अब वो एक दिन भी इंतजार करने को तैयार नहीं, दादा साईं ने बताया तो मुकद्दम मुस्कुरा दिया। कहीं यहाँ मेरे वाला मामला तो नहीं शुरू हो गया, मुकद्दम ने मुस्कुराते हुए पूछा था। दादा साईं ने हाँ में गर्दन हिलाई। मतलब करदम साईं तो गए काम से, मुकद्दम मुस्कुराते हुए हुरिया का हाथ थामकर उसे अंदर ले जाने लगा। चलो बेगम, कल से तुम्हारे भाई की शादी की तैयारियां करनी है, आराम कर लो। उन दोनों के जाने के बाद दादा साईं ने धड़कन का फूला हुआ चेहरा देखा। आपने कुछ कहना है, उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे देखकर पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। मेरे कमरे में आ जाएं, दादा साईं बस इतना कहकर अपने कमरे में चले गए। धड़कन दादा साईं के कमरे में आई तो करदम पहले ही वहां मौजूद था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं करदम साईं, दादा साईं ने पूछा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी दादा साईं, उसने धड़कन को पीछे आते नहीं देखा था, लेकिन जैसी नजर उसके चेहरे पर पड़ी वो खामोश हो गया। हाँ बोले, क्या कहना चाहते हैं आप, दादा साईं ने मुस्कुराते हुए पूछा। अकेले में बात करनी है, उसने धड़कन को देखते हुए कहा तो उसने घूर कर उसे देखा। पहले बताएं कि आपने मेरी पोती को क्या तोहफा दिया है, दादा साईं ने उसकी बात काटते हुए कहा। जब तक दादा साईं की बात पर धड़कन अचानक ही केटी की याद सताने लगी। हाय बेचारी, वो अकेली कमरे में होगी, धड़कन ने सोचा। गिफ्ट तो उसको परसों मिल जाएगा ना दादा साईं, मुझे आपसे कुछ और बात करनी है, वो सीरियस से अंदाज में बोला था। दादा साईं को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, शायद वो किसी और चीज के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन दादा साईं का मूड वक्त बहुत खुशगवार था और हुरिया को देखकर वो और खुश हो चुके थे। हमारी पोती रुखसती के बारे में कुछ कहना चाहती है, मेरे ख्याल में इसे कोई एतराज है, दादा साईं ने करदम का ध्यान धड़कन की तरफ लगाना चाहा। इसे कोई एतराज नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। जमीन को घूरती धड़कन ने अचानक आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा था। उसने कब पूछा था धड़कन से कि उसे एतराज है या नहीं, खुद से ही दादा साईं को मुतमईन कर रहा था। वैसे भी धड़कन को कौन सा कोई एतराज था, वो तो बस दादा साईं को सताने के लिए उनके कमरे में मुंह फुला कर आई थी। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो, दादा साईं ने उसका सीरियस अंदाज देखकर पूछा। धड़कन तुम जाओ यहाँ से, मुझे दादा साईं से कोई और अहम बात करनी है, करदम ने उसे भेजते हुए कहा, जबकि उसके सीरियस अंदाज ने धड़कन को बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो लोग हुरिया के पीछे वहां गए थे, दादा साईं जब मुकद्दम और हुरिया यहाँ आ रहे थे तब मुकद्दम की गाड़ी का कोई पीछा कर रहा था, मेरे कुछ आदमी शहर गए हुए थे, वो मुकद्दम की गाड़ी को आता देखकर उनके पीछे ही वापस आए, लेकिन उन्होंने देखा कि मुकद्दम के पीछे मलिक के लोगों की गाड़ी है और मुझे यकीन है कि मलिक के लोग हुरिया के लिए ही वहां गए थे। दादा साईं, मुझे डर है ये ना हो कि हुरिया को हमसे दूर करने के लिए वो लोग मुकद्दम साईं को कुछ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपने पोते को कुछ नहीं होने देंगे और ना ही हम अपनी नवासी को नुकसान पहुंचने देंगे। अल्लाह ना करे कि मुकद्दम साईं को कुछ हो, लेकिन आप मलिक की फितरत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो इस शिकस्त को हजम नहीं कर पा रहा कि हुरिया की शादी हो चुकी है, इसलिए अब मुकद्दम साईं को नुकसान पहुंचाने के लिए भी पीछे नहीं हटेगा, अपनी बेटी को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद से गुजर जाएगा। बेफिक्र हो जाओ, हम सुबह उठते ही मुकद्दम से इस बारे में बात करेंगे, दादा साईं ने उसे मुतमईन करते हुए कहा। दादा साईं, वैसे तो हुरिया कहीं बाहर नहीं जाती और अगर जाती भी है तो मुकद्दम साईं के साथ, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ अब वो कहीं बाहर ना जाए और अगर जाए तो गार्ड्स का इंतजाम कर दें, करदम ने फिक्रमंदी से कहा। करदम के उनके कमरे से जाने के बाद वो काफी परेशान थे, इतने बरसों के बाद उन्होंने अपनी नवासी को जी भर कर देखा था और अब मलिक फिर से अपना असल दिखाने लगा था, अपनी बेटी को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। हाँ, वो मुकद्दम शाह को भी नुकसान पहुंचा सकता था, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मुकद्दम हुरिया का शोहर है, उसका साहिबान है, उसे बस अपनी बेटी से मतलब था। अगर बात करदम की होती तो शायद वो भांजे को कुछ भी ना कहता, लेकिन यहाँ बात मुकद्दम शाह की थी। अम्मा साईं, आप क्यों जिद लगा के बैठी हैं, कासिम शाह साईं अपने पोते को कभी यहाँ नहीं आने देगा, ये बात याद रखिएगा आप, उठकर कुछ खा लीजिए, आपकी हालत दिन बदिन बिगड़ती जा रही है। ऐसन ने माँ को जबरदस्ती कुछ खिलाना चाहा, जबकि वो औरत अपने निढाल वजूद के साथ बार बार खाने की नफी कर रही थी। बस एक बार मेरे नवासे से मिला तो, बेबस एक बार अपनी पोती को देखना चाहती हूँ। ख़त्म करो ये दुश्मनियाँ, सब कुछ लूट चुकी हूँ। ये दुश्मनियाँ कुछ भी बाकी नहीं बचा। तुम्हारी बहन ने पंचायत में जाकर निकाह कर लिया तो तुमने बदला लेने के लिए शासाई की बेटी को ज़बरदस्ती अपने निकाह में ले लिया। लेकिन क्या मिला तुम्हें? उस मजलूम पर जुल्म करके दिन रात उसे अजियतें दे देकर वो मासूम तो एक बच्ची को पैदा करते ही दुनिया से चल बसी, और तुम्हारी बहन, उसे तुमने अपने हाथों से कत्ल कर दिया। मैं मेरी बच्ची का हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया। दुश्मनी की आड़ में तुमने उसका सारा खानदान बर्बाद कर दिया। अम्मा सही रो रो कर ऐसन मलिक को उसकी गलती का एहसास दिला रही थी, जो गुना उसने किया था उसको बता रही थी। हाँ, क्या हासिल हुआ था उसे उस खानदान को ख़त्म करके? उसके वो अहाना के पास एक नई जिंदगी गुजारने के अजम से आया था। वो अपनी बहन के किए की सजा देना अहाना को देना चाहता था, और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब वो उससे दूर चली गई, इतनी दूर कि कभी वापस नहीं आई। अहाना के साथ किए गए जुल्मों में उसे सारी जिंदगी के लिए तन्हा कर दिया। कोई औरत उसके दिल में वो मकाम ना बना सकी जो अहाना का था। वो खुद भी अहाना की जगह किसी को ना दे पाया, जो जगह वो अहाना को भी ना दे पाया था। सुबह होते ही धड़कन की पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई। इस पार्टी में घर के अलावा और कोई बाहर का इंसान नहीं था। कहने को ये सिर्फ घर में एक छोटी सी ही पार्टी थी, लेकिन इसकी तैयारी किसी बहुत बड़ी महफिल की तरह की गई। रिजवाना फूफो ने भी उसे विश किया था, लेकिन उनसे गिफ्ट मांगने की गलती धड़कन ने नहीं की। जब से उसका निकाह करदम से हुआ था, वो खुद ही उनका खिंचा खिंचा रवैया नोट कर चुकी थी। पहले तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन अब उसे इस बात का बुरा नहीं लगता। उसकी शादी दादा सही की मर्जी से हुई थी, इसलिए अगर घर में उस वजह से उससे कोई मूड ऑफ करे तो इसमें धड़कन की कोई गलती नहीं है। लेकिन वो चाहकर भी लापरवाह नहीं हो सकती थी, क्योंकि जब वो यहाँ आई थी फूफो उससे इतने प्यार से मिली थी कि वो खुद ही उन्हें चाहने लगी। अब उनका ये रवैया उसे हर्ट करता था। वो बिना किसी गलती के उनकी नापसंदीदगी का शिकार हुई थी। मलिक साईं, मुझे लगता है कि अम्मा साईं को शहर बड़े अस्पताल में शिफ्ट कर देना चाहिए। उनकी तबीयत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनके खानदानी मुलाजिम ने आकर कहा था। अम्मा साईं बार बार एक ही बात कर रही हैं, जबकि मैं उनको समझा चुका हूँ कि कासिम शाह अपने पोते और अपनी नवासी को हमसे मिलने नहीं देगा। वो मुझसे मेरी बेटी को दूर रखकर अपनी बेटी का बदला निकाल रहा है। मेरी वजह से अहाना नहीं रही, मैंने उस पर बहुत सितम ठाए हैं, बहुत जुल्म किया है, और अब वही वो मेरी बेटी के साथ कर रहा है। मेरी मासूम बच्ची की शादी उसने अपने पोते से कर दी, लेकिन वो मुझे नहीं जानता। मैं इतनी आसानी से अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं जान से मार डालूंगा उसके पोते को। मैं अपनी बेटी को खुद आज़ादी दिलवाऊंगा। मैं अपनी बेटी पर दिन रात सितम नहीं होने दूंगा। मुझे पता है मुकद्दम शाह ने मेरी बेटी से शादी सिर्फ अपना बदला पूरा करने के लिए की है। अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए उसने मेरी बेटी को इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर मेरी बेटी की आज़ादी की कीमत मुकद्दम शाह की मौत है, तो मुझे उसे जान से मारने पर भी कोई अफसोस नहीं। हुरिया, मेरे कपड़े नहीं मिल रहे। ये तीसरी बार हुआ था जब हुरिया ने किचन में कदम रखा और मुकद्दम ने फिर आवाज देकर उसे कमरे में बुला लिया। मुकद्दम साईं, सामने तो रखे हुए हैं। उसने दरवाजे से ही बेड पर पड़े कपड़ों की तरफ इशारा किया और पलट गई। अभी उसने किचन के दरवाजे पर कदम रखा ही था। हुरिया, मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। एक और आवाज ने उसे पलटने पर मजबूर कर दिया। ये चौथी दफा था जब वो कमरे में आई। उसने कमरे में आकर देखा, कपड़े वैसे ही बेड पर पड़े थे, जबकि वो आराम से बेड पर लेटा फोन पर कुछ कर रहा था। हुरिया को काम करते देखकर फोन एक तरफ रखकर वो हुरिया को नजरों के हसार में लेकर मुस्कुराने लगा। हुरिया आगे बढ़ी, ड्रेसिंग टेबल से उसका वॉलेट और घड़ी उठाकर बेड पर उसके कपड़ों के साथ रखी, और फिर अंदर जाकर उसके लिए जूते निकाल कर लाई। वो लाकर उसके कपड़ों के साथ जमीन पर रख दिए। आपकी परफ्यूम, बॉडी स्प्रे और सिगरेट और बाकी सब कुछ यहाँ सामने है। अब मैं जा रही हूँ। खबरदार जो मुझे आवाज आई। आज धड़कन की बर्थडे है और मुझे बहुत काम है। अच्छे बच्चों की तरह जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाएं। हुरिया ने उसे वार्न करते हुए कहा तो वो मुस्कुराते हुए सर को खम देता उसे जाने की इजाजत दे चुका था, जबकि उसका ये हुक्म चलाता अंदाज उसके दिल पर बिजलियां गिरा रहा था। हुरिया मुस्कुराते हुए बाहर जा चुकी थी। हाय मेरे दिल का करार, वो जेरे लब बुड़बुड़ाता उठकर तैयार होने लगा। धड़कन ये बिल्ली किसने दी, हुरिया ने पूछा। वो ही जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, धड़कन ने शर्माते हुए कहा। नाना साई ने, हुरिया ने गैस किया। रॉन्ग, धड़कन ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। अहमद मामू ने, हुरिया जल्दी से बोली। फिर रॉन्ग, धड़कन ने फिर से नफी में सर हिलाया। जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, सवेरा दीदा, हुरिया ने एक और गैस किया। ओहो दीदा, अपनी सोच को थोड़ा आगे बढ़ाएं, एक ही जगह अपनी सोच को रखकर बैठ जाती हैं। कुछ बड़ा सोचें, कुछ नया सोचें, धड़कन ने उसे हौसला देते हुए गैस करने का एक और मौका दिया। जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, हुरिया नहीं समझ पाई थी कि ये क्यूट सी कैटी उसे किसने दी है। करदम लाला, सवेरा ने धड़कन के कमरे के दरवाजे पर रुककर कहा और मुस्कुराते हुए अंदर चली आई। क्या तुम्हें ये कैटी करदम लाला ने दी है? मुझे यकीन नहीं आ रहा, हुरिया ने बेयकीनी से कहा। वो ही तो, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने इसे टच किया और इसने आगे से मियाऊ करके मुझे हाय बोला तो मुझे यकीन करना पड़ा, धड़कन ने अपनी कैटी के नर्म नाजुक सफेद रुई जैसे बालों को सहलाते हुए कहा। माशाल्लाह, अब तो करदम लाला तुम्हारी पसंद भी जान गए हैं, हुरिया ने खुशी से कहा। जान नहीं गए, जबरदस्ती मजबूर करके लिया है ये गिफ्ट, वरना वो तो न जाने कौन कौन से रस्म रवाज निभाने के चक्कर में थे। और तो और, मैंने मुकद्दम लाला को भी फोन करके कहा था कि मेरी दीदा को गिफ्ट दें। देखा आपकी बहन प्लस नन भाभी ने कैसे कितना पुराना रवाज खत्म कर दिया, धड़कन ने इतराते हुए कहा, जिस पर हुड़िया और सवेरा ने बकायदा उसके लिए तालियां बजाकर उसकी हौसला अफजाई की थी। करदम तुमने क्या तोहफा दिया धड़कन को, दादा साई सबके साथ बाहर लाउंज में बैठे थे जब अचानक उन्होंने करदम से पूछा। दादा साई, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, पहले ही जमीनों के बहुत बड़े मसाइल चल रहे हैं, मेरे पास इन फजूलियात के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, और फिकर ना करें, दे दिया है मैंने उससे तोहफा, करदम ना तालुकी का इजहार करते हुए बोला। वो अभी भी चौधरी से मिलकर वापिस आया था। वैसे दादा साई, आप लोग धड़कन को बच्ची बच्ची कर बिल्कुल ही बच्चा बनाते जा रहे हैं, उसे थोड़ा मैच्योर कीजिए, बच्चों की तरह उसकी सारी बातें मानकर आप लोग उसमें बचपना ज्यादा ला रहे हैं, करदम ने अपने फोन में मसरूफ अंदाज में कहा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं करदम साई, मुकद्दम ने बात में हिस्सा लिया, लेकिन माशाल्लाह से आपने जो उसे गिफ्ट दिया है उससे वो जल्दी मैच्योर हो जाएगी, होप सो उससे उससे अकल आ जाए और वो ज्यादा समझदारी वाले काम करे, मुकद्दम ने अपनी हंसी दबाई थी, जबकि करदम पछता रहा था कि आखिर उसने उसे बताया ही क्यों कि करदम ने धड़कन को एक बिल्ली का बच्चा गिफ्ट दिया है। खैर छोड़ो इन सब बातों को करदम, गांव में सभी घरों में शादी के कार्ड भिजवा दिए गए हैं, रुख्सती कल ही होगी और किसी को कोई एतराज नहीं है इससे, अहमद शाह ने उन्हें मौजू से हटाते हुए कहा। उनके बात सुनकर करदम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। तो इंतजार खत्म हुआ, तो कल मैं तुम्हें बताऊंगा धड़कन कि तुम करदम शाह के लिए क्या हो। हवेली में हर कोई मसरूफ था, हर किसी को अपनी अपनी तैयारी की पड़ी थी, जबकि धड़कन ने तो अपनी कैटी के लिए भी नए कपड़े बनवाए थे। बाबा ने पूछा कि ये कैटी उसे किसने ला कर दी है, तो धड़कन ने कहा उसी ने जो उसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन फिर बाबा सही को ये भी जानता था कि आखिर वो शख्स कौन है जिसने उसे ये कैटी ला कर दी है। धड़कन ने पहले तो बहुत नखरे दिखाए, लेकिन फिर उसने बता ही दिया कि ये कैटी उसे करदम लाना ने ला कर दी है। दोपहर में वो इन सब चीजों को फजूल कह रहा था। हाँ शायद ये सब फजूल हो चुका होगा धड़कन को देने के बाद, क्योंकि करदम साई को कोई फजूल काम नहीं करते। फिर अहमद शाह ने भी उसका जिक्र किसी के सामने नहीं किया। दादा साई को यही लगा था कि ये कैटी धड़कन ने खुद मंगवाई है, क्योंकि करदम ने उन्हें इस तरह की कोई उम्मीद नहीं दी थी। घर के सभी मुलाजिम हवेली को सजाने में मसरूफ थे। तायशा को अपने कमरे से नहीं निकल रही थी, जबकि रिजवाना फूफो सबको दिखाने के लिए करदम की खुशी में खुश होने की कोशिश कर रही थी। सवेरा हर काम में हिस्सा ले रही थी और तो और धड़कन को छेड़ने में सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा कर रही थी। सवेरा में आने वाले बदलाव को घर में सबने नोट किया था, लेकिन इस सब के बावजूद दादा साई उससे बिल्कुल बात नहीं करते थे। सवेरा ने उसके पास जाकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन दादा साई उसे इग्नोर कर गए। दादा सईं का खिंचा खिंचा अंदाज सवेरा ने नोट कर लिया था, इसीलिए उन्हें दोबारा मुखातिब करने की गलती उसने नहीं की, जबकि सवेरा अब हुरिया से भी बहुत प्यार से बात कर रही थी। इससे पहले उसने हुरिया से कभी इस तरह से बात नहीं की थी, अब तो वो हुरिया से दोस्ती भी कर चुकी थी। जो भी था, अब वो सब घर वालों की फिक्र करने लगी थी, सबसे ज्यादा नाजिया की। वो उनका बहुत ख्याल रखती, नाजिया को भी सवेरा बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो ज्यादा वक्त उसी के साथ गुजारती, जबकि हुरिया के साथ नाजिया चाहकर भी नॉर्मल रवैया नहीं रख सकती थी। वो जब भी उसे कबूल करने की कोशिश करती, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में यही बात आ जाती कि इसका बाप के शोहर का कातिल है। लेकिन फिर भी मुकदम के लिए वो हुरिया को कबूल करने की कोशिश कर रही थी। ये उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वो अपने बेटे को खो नहीं सकती थी। हर गुजरते लम्हे के साथ मुकदम की हुरिया के लिए बढ़ती मोहब्बत को वो नोट कर चुकी थी। नाजिया की हर मुमकिन कोशिश होती कि मुकदम के सामने जब भी हुरिया को मुखातिब करे, तब उसके लहजे में किसी किस्म की कोई तलखी ना हो, और मुकदम की गैर मौजूदगी में वो उसे मुखातिब नहीं करती थी। हुरिया ने भी ये बात बहुत नोट की थी कि वो उसे सिर्फ और सिर्फ मुकदम के सामने ही बुलाती हैं। लेकिन ये बात उसने मुकदम को नहीं बताई थी। वो खुद भी जानती थी कि हुरिया को कबूल करना उनके लिए इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो खुद कोशिश कर रही थी कि वो नाजिया के सामने ज्यादा ना जाए और ना ही उन्हें मजबूर करे कि वो उससे बात करें या खुद से उसे मुखातिब करें। वो जानती थी कि ये चीज उन्हें तकलीफ देती है। दादा सईं की तो हर बात हुरिया से शुरू होकर हुरिया पे खत्म हो रही थी। उसके यहाँ आने से पहले ही दादा सईं ने रिजवाना भूपो और नाजिया को अपने कमरे में बुलाया था और उन दोनों से कहा था कि खबरदार जो उन्होंने हुरिया के साथ कोई भी गलत रवैया रखने की कोशिश की। दादा सईं नहीं चाहते थे कि अब हुरिया के साथ किसी भी किस्म की कोई ज्यादती की जाए जिससे वो हर्ट हो। रिजवाना फूफो ने तो वापिस आकर उसे ताना मारना तो दूर की बात तक न की थी, और नाजिया अपने बेटे की मोहब्बत में मजबूर होकर उसके सामने से बात करने की कोशिश कर रही थी, जबकि दादा सईं अपने हर पुरानी ज्यादती, अपने हर बुरे रवैये को भूलकर हुरिया को मोहब्बत से वेलकम कर चुके थे। और हुरिया, जो सारी जिंदगी अपने नाना की मोहब्बत के लिए तरसी हुई थी, उनकी हर पुरानी बात भुलाकर उनके साथ खुश खुश रहने लगी। उसे ना रिजवाना के रवैये से कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही नाजिया के। वो तो नाना साईं को देखकर हैरान थी, जो उससे बहुत मोहब्बत से पेश आ रहे थे। इस वक्त हुरिया को कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ मुकदम की वजह से हुआ है। ऐसा महसूस हो रहा था कि नाना साईं के दिल में अपने आप ही अल्लाह ने उसके लिए मोहब्बत डाल दी है। आज साल गिरा तो धड़कन की थी, मगर खाने की सारी डिश नाना साईं के हुक्म पर हुरिया की पसंद की बनाई गई थी, जबकि धड़कन भी दादा सईं को हुरिया से इस तरह प्यार से बात करते देखकर बहुत खुश थी। वो जब से आई थी, दादा सईं को हुरिया से खिंचा खिंचा नोट कर चुकी थी। उसने कई बार हुरिया से वजह भी जानना चाही, लेकिन वो उसे बातों में लगाकर कभी असल बात नहीं बताती थी। फिर एक दिन उसे खुद ही सब कुछ पता चल गया, जिस दिन दादा सईं ने उसे कमरे से बातें सुनाकर निकाला था। उस दिन उसने अहमद शाह के कमरे में जाकर उनसे सब कुछ पता कर लिया था। हुरिया तो जब से मुकदम घर से गया था, तब से ही उसके इंतजार में बैठी थी कि कब वो वापस आए और कब वो उसे दादा साईं के बारे में सब कुछ बताए कि किस तरह से दादा साईं ने उससे मोहब्बत से बात की, हर बात में उससे राय मांगी और ये तक कह दिया कि अब हुरिया जब चाहे आहाना के कमरे में जा सकती है, वहां बैठ सकती है, हता के वहां रह भी सकती है। हुरिया की खुशी तो मानो कोई इंतहा ही नहीं थी। दादा सईं की इजाजत के बाद वो थोड़ी देर आहाना के कमरे में भी गई थी। उसकी पुरानी चीजें देखती उसे महसूस करती न जाने कितनी देर वो उसके कमरे में रोती रही, जब नाना सईं वहां आए और उसे अपने सीने से लगाया। ये वो वाहिद गम था जो नाना सईं और हुरिया का एक सा था। इस गम पर दोनों का बराबर का हिस्सा था, बराबर का हक था, और आज ये हक 19 साल के बाद हुरिया को नाना सईं ने दिया था। मुकदम तो सुबह होते ही उसे तंग करते हुए अपने काम पर जा चुका था। इतने दिनों से करदम सब कुछ अकेले संभाल रहा था, लेकिन अब करदम की शादी हो रही थी तो मुकदम ने फैसला किया था कि उस पर ज्यादा बोझ नहीं डालेगा, बल्कि दादा सईं के कहने पर सब कुछ खुद ही संभालने की कोशिश करेगा। और इस वक्त उसे सुबह के गए हुए रात के 8 बज चुके थे। वो अभी तक वापिस नहीं आया था, जबकि पार्टी के नाम पर धड़कन और सवेरा ने मुलाजमों के साथ मिलकर थोड़ी बहुत मस्ती की थी, जिसमें हुरिया भी शामिल थी। धड़कन की पार्टी भी बिल्कुल धड़कन जैसी थी, इसमें घर का कोई बड़ा शामिल नहीं था, बस रंग बिरंगी खाने बनाए गए और घर के ही मुलाजमा के साथ गेम्स खेली गईं, और एंड पर शाही खाना खाकर केक काट दिया गया। और उसकी इस बचकाना पार्टी में कोई भी बड़ा शामिल नहीं था। کیونکہ دھڑکن کا کیک تو سب کل رات کو ہی کاٹ چکے تھے، جبکہ اس خاندان میں کبھی برتھ ڈے پارٹی نہیں منائی گئی۔ اس گھر میں یہ خوشی کا دن صرف اپنوں کے ساتھ ہی منایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی دھڑکن کو اس کی پارٹی کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ آج کی تاریخ میں تائشہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی، شاید یہ اس کی زندگی میں سایہ دن تھا۔ جبکہ دھڑکن نے بھی اسے اپنی پارٹی میں بالکل نہیں بلایا، وہ اس کی شکل دیکھ کر اپنا دن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چودھری صاحب، اس دن آپ نے کہا تھا کہ آپ کردم شاہ کو جان سے مار ڈالیں گے، تو کیا آپ سچ میں ایسا کچھ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ چودھری کا خاص آدمی اصغر اس کے پاس بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا۔ ارے نہیں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں تو اسے ڈرا رہا تھا، لیکن شاہ سائی کے ان دونوں پوتوں کا میں کیا کروں؟ ایک ضرورت سے زیادہ عقل مند ہے تو دوسرا ضرورت سے زیادہ خطرناک، لیکن اپنی زمین تو میں بھی ہاتھوں سے اس طرح سے جانے نہیں دوں گا۔ زمین پر میرا حق ہے، میرے باپ سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے وہ زمین شاہ سائی کے نام کر دی، لیکن وہ کروڑوں کی زمین کو میں کوڑیوں کے دام میں دے دوں؟ اتنا پاگل نہیں ہوں میں۔ لیکن اس زمین کی پہلے تو کوئی قیمت نہ تھی، اس کی قیمت بنی ہے جب لوگوں کو یہ پتا چلا ہے کہ وہ وہاں پر لڑکیوں کا سکول تعمیر ہونے والا ہے، اور وہ زمین تو آپ کے ابا نے انہیں بیچ دی ہے، اور وہ رقم بھی لے چکے ہیں، ان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں۔ وہ بے وقوف لڑکیاں آپ کو کاغذات دے گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کاغذات حویلی واپس کیسے پہنچے؟ اصغر نے پوچھا۔ اصغر کی بات سن کر چودھری کو وہ دن یاد آیا جب اپنی شادی والے دن مقدم شاہ نے آ کر اسے اتنا دھویا تھا کہ حد نہیں۔ اس دن مقدم شاہ نے اس سے نہ صرف زمین کے کاغذات چھین لیے تھے، بلکہ اسے یہ بھی کہا تھا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ پھر وہاں سے چلا گیا تھا، اور مقدم شاہ کی مار کھانے کے بعد چودھری کو یہی لگا تھا کہ شاید ہی وہ زندہ بچ پائے، لیکن اسے وہاں پڑے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ مقدم شاہ واپس آ گیا اور اس سے کہا، چودھری تم سے دشمنی میں ذرا مزہ نہیں آ رہا، پلیز جلدی مت مرنا، میں تمہیں مزید مارنا چاہتا ہوں، لیکن آدھ مرے شخص کو مارنا مقدم شاہ کا اصول نہیں ہے، چلو میں تمہیں اسپتال پہنچا دیتا ہوں، وہاں تم جلدی سے ان زخموں کی مرہم پٹی کروا لو تاکہ ایسے ہی زخم میں تمہیں اور دے سکوں۔ انائی لبوں پہ گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مسکرا کر مقدم شاہ نے اس کا بے جان وجود ہسپتال میں جا پھینکا تھا، اور اس ساری کاروائی کے بعد وہ اپنی شادی اٹینڈ کرنے گیا تھا جیسے کہ وہ کوئی دولہا نہیں بلکہ کوئی عام مہمان ہو۔ خیر مقدم شاہ کا تو ہر انداز ہی نرالا تھا، لیکن اس کے بعد چودھری نے مقدم سے پنگا نہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ جانتا تھا مقدم اگر ہر بات پر مارنے پر آ جاتا ہے تو کردم ہر بات کو سمجھداری سے حل کرنے کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن آج زمینوں پر مقدم شاہ کو دیکھ کر وہ وہیں سے لوٹ آیا۔ وہ فی الحال اس کے ہاتھوں سے کیما نہیں بنانا چاہتا تھا، اس کی ساری دھمکیاں صرف کردم شاہ کے لیے تھیں۔ کردم سائیں، جنید تو کہہ رہا تھا کہ چودھری آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، اگر آپ نے زمین پر کام شروع کروایا تو وہ آپ کو قتل کروا دے گا، میں تو صبح سے یہاں پہ کام پر لگا ہوں، یہاں پر تو کوئی نہیں آیا۔ کردم ابھی باقی کام نپٹا کر واپس آیا تھا جب اسے پتا چلا کہ مقدم اسی زمین پر کام شروع کروا چکا ہے، اسی لیے وہ فوراً ہی اس زمین پر آ گیا۔ ویسے اسے چودھری کا کوئی ڈر تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ مقدم پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ جی مقدم سائیں، وہ کہہ تو رہا تھا، لیکن شاید اسے پتا چل گیا ہے کہ یہاں آپ ہیں، اسی لیے اس طرف نہیں آیا، ڈرتا ہے آپ سے، کردم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے مجھ سے کیوں ڈرتا ہے، میں تو اس کا مسیحا ہوں، میں نے اس کی جان بچائی ہے، اسے اسپتال چھوڑ کے آیا تھا، وہ بھی اپنی زندگی کے سب سے خاص دن پر، اپنی شادی کے دن پر۔ کوئی کرتا ہے کیا کسی کے لیے اس طرح؟ لیکن میں نے کیا، مقدم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیا یہ بتانا پسند کریں گے آپ؟ کردم اب بھی مسکرا رہا تھا۔ اس کی جان بچانے کے لیے، مقدم نے یقین دلانا چاہا۔ جی نہیں مقدم سائیں، آپ نے یہ سب کچھ اس کی جان بچانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنا ہاتھ بار بار اس پر صاف کرنے کے لیے کیا تھا۔ آپ کو ایک پنچنگ بیگ چاہیے تھا، کیونکہ اس بے جان پنچنگ بیگ سے آپ کا دل بھر چکا ہے، اس لیے آپ نے اپنے لیے ایک جیتے جاگتے پنچنگ بیگ کا انتظام کیا ہے، تاکہ جب بھی آپ کا کسی کو پیٹنے کا دل کرے آپ اپنے اس پنچنگ بیگ، میرا مطلب ہے چودھری، کا استعمال کر سکے۔ کردم کی مسکراہٹ ابھی بھی برقرار تھی۔ ویسے ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو میں آپ کی سوچ کو بدل نہیں سکتا، مقدم نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کے اس انداز پر کردم کہکا لگا کر ہنس دیا۔ سب کچھ تیار ہے نا، دیکھو کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے، جس طرح سے میں نے کہا ہے بالکل اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ गोली उसके सीने के बीचों बीच लगनी चाहिए। अगर वो जिंदा बच गया तो तुम में से कोई एक भी जिंदा नहीं बचेगा। और एक बात का ध्यान रखना, मुकद्दम शाह पर गोली किसने चलाई है ये बात कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद मैं अपनी बेटी को अपने पास ले आऊंगा। मेरा नहीं ख्याल कि शाह खानदान अपने पोते की बेवा को वापिस इस हवेली में रखना चाहेंगे, पर मैं अपनी बेटी को समझा कर हमेशा के लिए अपने पास ले आऊंगा। मुकद्दम शाह जो अपने बाप की मौत का इंतकाम लेने के लिए मेरी बेटी का इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तुम बस वो करो जो मैं कहता हूँ। मलक ने हुक्म देते हुए फोन बंद करके रखा था। जब उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसकी बात सुन रहा हो, लेकिन पलट कर देखने पर वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अगर कोई सुन भी लेता तो उसका क्या उखाड़ सकता था, ये हवेली उसकी थी। कोई उसकी बातें सुन भी लेता तो उसका क्या जाता, क्योंकि मलक के इलाके के किसी भी इंसान को इस तरफ जाने की इजाजत नहीं थी। उसे यकीन था ये खबर कभी उसकी हवेली से बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी कौन हो सकता है जो उसकी बातें छुपकर सुन रहा हो। हुरिया का फोन कब से बज रहा था, लेकिन वो कमरे में नहीं थी। न जाने कितनी बार उसका फोन बज कर बंद हो गया। वो बाहर सोफे पर बैठी मुकद्दम के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन मुकद्दम शाह तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वैसे तो मेरे बगैर एक पल भी नहीं गुजरता, और जब मैं इंतजार कर करके हलकान हो रही हूँ तब आने का नाम ही नहीं ले रहे। हुरिया ने अभी तक कुछ नहीं खाया था। उसका इरादा मुकद्दम के साथ डिनर करने का था, लेकिन न जाने मुकद्दम कहाँ रह गया था। उसकी वापसी का इंतजार करते वो कभी इधर से उधर टहलती तो कभी सोफे पर थक कर बैठ जाती। ये इंतजार कितना मुश्किल होता है, इस बात का एहसास आज हुरिया को पहली बार हुआ था। धड़कन जो अभी दादा साईं के कमरे से लूडो खेलकर वापस अपने कमरे में जा रही थी, उसे बाहर सोफे पर बैठा देखकर पूछने लगी, कैसी लापरवाह बीवी हो तुम धड़कन, अभी तक करदम लाला नहीं आए और तुम अपने कमरे में सोने के लिए जा रही हो, और इससे पहले नाना साईं के साथ मस्तियां कर रही थी। कितनी गलत बात है, तुम्हें यहाँ मेरे साथ बैठ कर करदम लाला का इंतजार करना चाहिए। न जाने उन्हें क्या काम पड़ गया हो और कितनी देर से वो ना आए। न जाने उन बेचारों ने खाना भी खाया होगा या नहीं। वो अपना गुस्सा उस पर निकालते हुए से समझाने लगी, मेरी प्यारी बहन, अगर आप इंतजार कर करके इतनी थक चुकी हैं तो फोन किस लिए बनाए गए हैं। अभी फोन करके पूछ लें कि मुकद्दम साईं आप कहाँ रह गए और कब तक आएंगे। धड़कन ने उसी के अंदाज में उसकी नकल उतारते हुए कहा, इस तरह से उनका इंतजार करने से बेहतर है कि आप आराम से जाकर कमरे में उन्हें फोन करें और उन्हें जल्दी वापिस आने के लिए कहें। अगर तो वो खाना खा के आएंगे तो आप आराम से सो जाएं, लेकिन अगर वो खाना ना खा पाए तो आप उनका इंतजार करें यहाँ पर बाहर बैठकर। अपनी कमर क्यों तोड़ रही हैं भाई। माना के शोहर का ख्याल रखना फर्ज है, लेकिन शोहर जनाब को भी तो पता होना चाहिए कि घर में कोई मासूम उनका इंतजार कर रहा है, उनके लिए भूखा बैठा है। चलें, अब आप ही फौरन यहाँ से उठकर अपने कमरे में जाएं और मुकद्दम लाला को फोन करें, उनसे पूछें कि वो कब तक आएंगे, और अगर जल्दी आने का इरादा नहीं है तो आप आराम से सो जाएं। गुड नाइट। वो प्यार से उसके गाल पर चुटकी काटती अपने कमरे में चली गई। सही तो कह रही है धड़कन, ये फोन होते किस लिए है। अपनी अकल पे हाथ मारती वो उठकर अपने कमरे में चली गई। ये तुम क्या कह रही हो खदीजा, ऐसा नहीं हो सकता। एहसन इतना नहीं गिर सकता कि अपने ही दामाद को मारने की कोशिश करे। वो इतना जालिम नहीं बन सकता कि वो अपनी ही बेटी को बेवा करना चाहे। अम्मा सही को खदीजा की बातों पर यकीन नहीं आया, जो अभी भी मलिक की फोन पर होने वाली गुफ्तगू को सुनकर उन्हें बता रही थी। नहीं बड़ी बीबी जी, मैंने अपने कानों से सुना है, वो कह रहे थे कि गोली मुकद्दम शाह को लगनी चाहिए और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद वो हुरिया बीबी को हमेशा के लिए यहाँ ले आएंगे और उन्हें हवेली वालों के खिलाफ कर देंगे। वो कह रहे थे कि हुरिया बीबी का शोहर अपने बाप के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए हुरिया बीबी को इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी बीबी जी, क्या वो हुरिया बीबी पर बहुत सितम ढाता होगा, जिस तरह से मलक साहब अहाना बीबी को मारते पीटते थे, खदीजा ने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि मैं अपनी नवासी को बेवा होते नहीं देख सकती। हमें जल्द अज जल्द ये बात शाह साईं तक पहुंचानी पड़ेगी। उन्हें बताना पड़ेगा कि उनके पोते की जान खतरे में है। लेकिन ये कैसे होगा बड़ी बीबी जी, मलिक साहब ने तो इस इलाके के किसी भी बंदे को उस इलाके में जाने से मना कर दिया है, खदीजा ने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं खदीजा, कुछ तो करना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। हमें ये खबर किसी भी तरह शाह साईं तक पहुंचानी होगी, इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, अम्मा साईं ने फिक्रमंदी से कहा। फोरिया ने कमरे में कदम रखा तो उसका फोन पहले से ही बज रहा था। वो तेजी से दौड़ती हुई उसके पास पहुंची, लेकिन वो पहले ही बंद हो गया। ये मुकदम की 35वीं मिस्ड कॉल्स थी। अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखती हुए वो एक पल के लिए शर्मिंदा हो गई और फिर अगले ही लम्हे तेजी से बटन दबाती हुई कॉल बैक करने लगी। माना कि हम आशिक हैं आपके, लेकिन इस तरह से तड़पाना आशिकी के असूलों में नहीं आता, वो हर बार की तरह अपने दिल मोह लेने वाले अंदाज में बोला। वो दरअसल मैं नीचे बैठी थी, आपका इंतजार कर रही थी, फोन अंदर कमरे में था, पता नहीं चला, वो जल्दी से बोली, जबकि उसके अंदाज पर वो दिलकशी से मुस्कुराया था। इस बात का बदला हम आपसे घर आकर लेंगे, आखिर इतना तड़पाया है आपने हमें, वो अब भी दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। ओह, ये शख्स हर बार इतनी मोहब्बत से बात कैसे कर लेता था, क्या उसे हुरिया की कोई बात बुरी नहीं लगती थी। मेरी कोई गलती नहीं है मुकदम साई, मैं सच्ची में आपका इंतजार कर रही थी, हुरिया ने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। मुझे पता है मेरे दिल का करार मेरा बेताबी से इंतजार कर रहा होगा, लेकिन मैं इतनी देर से तुम्हें यही बताने के लिए फोन कर रहा था कि कल का सारा दिन करदम साई शादी में निकल जाएगा और फिर परसों वलीमा है, इसीलिए काम का बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। करदम साई ने छोटे छोटे बहुत सारे काम रख छोड़े हैं जिनको निपटाते हुए मुझे बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए तुम आराम से सो जाओ, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और खाना खा लेना, मुकदम ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। ठीक कहती थी धड़कन, अगर वो पहले ही मुकदम को फोन करके पूछ लेती तो इस वक्त तक वो अपनी आधी नींद भी पूरी कर चुकी होती। ठीक है, आप अपना काम खत्म करके आराम से आइएगा, हुरिया ने फोन रखते हुए कहा और खुद किचन का रुख किया। उसे इस वक्त बहुत भूख लग रही थी। वो दोनों तकरीबन रात के 2 बजे घर वापिस आए। सारा काम खत्म हो चुका था, अब वो दोनों बेफिक्र थे। खाना उन दोनों ने रास्ते में होटल से खाया था और अब करदम को हमेशा की तरह चाय की तलब हो रही थी। घर आते ही उसने सबसे पहले चाय पीनी होती थी। उसने किचन की तरफ देखा, कोई मुलाजिम मौजूद नहीं था। मैंने तुम्हें कहा था होटल से चाय पी लो, लेकिन तब तुमने कहा कि होटल की चाय तुम्हें पसंद नहीं, और अब घर पहुँचते हुए हमें इतना वक्त लग चुका है कि अब कोई भी नहीं जाग रहा, इसीलिए आज रात आपको बगैर चाय के ही सोना होगा। लेकिन बगैर चाय के आपको नींद कैसे आएगी, उसने मुतजस्सस अंदाज में पूछा था, क्योंकि उसने कभी भी करदम को बगैर चाय पिए सोते हुए नहीं देखा था। अब उसे यकीन था करदम सारी रात नहीं सोएगा। न जाने वो कौन से लोग हैं जो चाय पी लें तो उन्हें सारी रात नींद नहीं आती, और एक करदम साई थे जो बगैर चाय के नहीं सो पाते थे। कोई बात नहीं, एक दिन चाय नहीं मिली तो क्या हो गया, ऐसे भी आज काफी थकावट हो चुकी है, जल्दी नींद आ जाएगी, करदम उसे बेफिक्री से कहता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जबकि उसके बेफिक्र अंदाज पर मुकदम भी अपने कमरे में चला गया। जबकि अगर करदम चाय के लिए थोड़ी बेचैनी दिखाता तो वो हुरिया को जगाकर उसे चाय जरूर बनवा लेता, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक न एक नशा जरूर होता है। मुकदम के अंदर सिगरेट का नशा था और इसी तरह से करदम के अंदर चाय का नशा।